एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में एक ऐसी सोच, एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने वाकई दुनिया को देखने का नजरिया बदला है। हाँ, हम बात करेंगे हेंस जे मॉर्गेंथाउ और उनकी जबरदस्त प्रभावशाली किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशंस की।
बिल्कुल, और ये वो किताब है जिसने पॉलिटिकल रियलिज्म, जिसे हम राजनीतिक यथार्थवाद कहते हैं, उसको मतलब डिस्कशन के सेंटर में ला दिया।
हाँ,
और सच पूछिए तो आज की दुनिया को समझने के लिए जहाँ देशों के बीच ये तनाव, होड़ और यू नो शक्ति प्रदर्शन, ये सब आम बातें हैं,
रोज ही देख रहे हम तो।
हाँ, तो मॉर्गेंथाउ को पढ़ना और समझना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
सही कहा, क्योंकि ये किताब हमें सिखाती है कि देशों के वो जो चमकदार वादे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उनके पीछे की असलियत क्या है। वो असल में काम कैसे करते हैं, उनकी असली मंशा क्या होती है। चलिए इसी यथार्थ की पड़ताल करते हैं हेंस मॉर्गेंथाउ के नजरिए से।
तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं खुद हेंस मॉर्गेंथाउ के बारे में।
हाँ,
वो जैसा आपने बताया 1904 से 1980 तक जर्मनी में पैदा हुए थे, एक कानूनविद और पॉलिटिकल साइंटिस्ट। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ किताबी नहीं है ना।
हाँ, उनकी सोच पर ना उनके अपने जीवन के अनुभवों का बहुत गहरा असर पड़ा है। 1930s में जर्मनी में जब नाजी हुकूमत आई,
हाँ,
तो उन्हें देश छोड़ना पड़ा। 1937 में वो अमेरिका आ गए, तो सोचिए उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वो लीग ऑफ नेशंस जैसी संस्थाएं थीं वो नाकाम हो गईं,
बिल्कुल,
कैसे आदर्शवादी बातें धरी की धरी रह गईं और सत्ता की राजनीति कितनी बेरहम हो सकती है।
बिल्कुल। तो उनमें खास बात थी, एक तरफ तो उन्हें यूरोपियन राजनीतिक दर्शन जैसे मैकियावेली और हॉब्स,
हाँ, जिन्होंने सत्ता पर बहुत बेबाकी से लिखा है,
बिल्कुल, उनकी गहरी समझ थी, और दूसरी तरफ अमेरिका आकर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को उभरते हुए देखा, वो भी एक भारी लेकिन अनुभवी नजरिए से।
अच्छा,
तो इसी बैकग्राउंड ने उनके यथार्थवाद को इतनी धार दी, मतलब वो इतना प्रभावी बना।
यानी उनकी बातें सिर्फ थ्योरी नहीं थी, है ना, बल्कि इतिहास के कड़वे सच और जो पर्सनल अनुभव थे उनसे निकली थीं।
हाँ बिल्कुल, शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते हुए उन्होंने ये किताब लिखी, और इसका मकसद था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किसी आदर्शवादी चश्मे से नहीं बल्कि असलियत के धरातल पर समझना।
तो पॉलिटिक्स अमंग नेशंस का लक्ष्य क्या है, मतलब एकदम सीधा साधा लक्ष्य है?
हाँ बिल्कुल, सीधा साधा लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल जमीनी सिद्धांत देना। मॉर्गेंथाउ का कहना है कि अगर आप दुनिया को समझना चाहते हैं तो भावनाओं या आदर्शों से ज्यादा इस बात पर ध्यान दें कि देश असल में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं।
और उनका जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो क्या है?
थोड़ा साफ है लेकिन कुछ हद तक चौंकाने वाला भी है शायद।
हाँ है। तो
उनका केंद्रीय तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसी भी दूसरी राजनीति की तरह असल में ताकत यानी पावर के लिए एक लगातार चलने वाला संघर्ष है।
हमेशा
हमेशा
देशों के व्यवहार को समझने की चाबी है राष्ट्रीय हित, जिसे हमेशा शक्ति के पैमाने पर ही तौला जाना चाहिए।
मतलब देश अच्छे हैं या बुरे, नैतिक हैं या अनैतिक, इससे पहले वो अपनी ताकत बढ़ाने या बचाने के बारे में सोचते हैं।
बिल्कुल, यही उनका कोर पॉइंट है।
मॉर्गेंथाउ लीग ऑफ नेशंस जैसी कोशिशों की नाकामी का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि ये इसलिए असफल हुई क्योंकि इन्होंने इंसान के मूल स्वभाव और राजनीति के कठोर नियमों को नजरअंदाज किया, वो नियम जो कहते हैं कि हर कोई अपनी सुरक्षा और ताकत को लेकर फिक्रमंद रहता है।
तो ये किताब हमें एक तरह के सफर पर ले जाती है, है ना? पहले वो यथार्थवाद के कुछ बुनियादी सिद्धांत बताते हैं।
हाँ, वो 6 सिद्धांत।
हाँ, फिर समझाते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति किन किन चीजों से बनती है और वो सिर्फ सेना नहीं है।
नहीं बिल्कुल नहीं।
फिर वो शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर जैसे तरीकों की बात करते हैं, और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता की सीमाओं पर चर्चा करते हुए शांति की संभावनाओं और कूटनीति के रोल को टटोलते हैं।
चलिए अब मॉर्गेंथाउ के कुछ सबसे अहम विचारों को थोड़ा और खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उनके मशहूर राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों से। सार में ही सिद्धांत क्या कहते हैं?
पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत, राजनीति कुछ वस्तुनिष्ठ नियमों पर चलती है जिनकी जड़ें इंसान के स्वभाव में हैं। और मॉर्गेंथाउ मानते थे कि इंसान के स्वभाव में सत्ता पाने की एक गहरी, मतलब कभी न मिटने वाली इच्छा होती है, जिसे उन्होंने एनिमस डोमिनेंडी कहा है।
हाँ, एनिमस डोमिनेंडी।
इसे बदलना नामुमकिन है, इसे समझना जरूरी है।
दूसरा और शायद सबसे ज्यादा मशहूर सिद्धांत, यथार्थवादी राजनीति का मेन गाइड पोस्ट है हित, जिसे शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
अच्छा,
यानी किसी देश के काम को समझने के लिए ये मत देखिए कि नेता ने भाषण क्या दिया, बल्कि ये देखिए कि उस काम से देश की ताकत बढ़ी या घटी। ये विश्लेषण का एक ठोस आधार देता है, मतलब सब्जेक्टिविटी कम करता है।
तो क्या इसका मतलब यह है कि ताकत ही सब कुछ है? मतलब तीसरा सिद्धांत क्या कहता है इस बारे में?
हाँ, देखिए, तीसरा सिद्धांत कहता है कि शक्ति के संदर्भ में हित देखना तो जरूरी है, लेकिन शक्ति का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
अच्छा, कैसे?
मतलब कभी सैन्य ताकत अहम होती है तो कभी आर्थिक या तकनीकी ताकत ज्यादा मायने रखती है, या सॉफ्ट पावर जैसे कहते हैं।
हाँ हाँ,
तो शक्ति का रूप बदलता रहता है, पर शक्ति पाने या बचाने का इरादा वो बना रहता है।
और नैतिकता का क्या? ये बड़ा सवाल है। चौथा सिद्धांत इसी मुश्किल सवाल से जूझता है ना?
बिल्कुल। मॉर्गेंथाउ कहते हैं कि यथार्थवाद अनैतिक नहीं है, लेकिन यह मानता है कि दुनिया में लागू होने वाले जो नैतिक सिद्धांत हैं और एक नेता की अपने देश को बचाने की जिम्मेदारी है।
हाँ,
इनके बीच अक्सर तनाव होता है, एक टेंशन होती है। नेता का पहला फर्ज देश को बचाना है, जिसके लिए कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद निजी नैतिकता के हिसाब से सही न लगें।
ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब देशित के नाम पे कुछ भी किया जा सकता है क्या?
नहीं, देखिए, कुछ भी नहीं। मॉर्गेंथाउ इसे जिम्मेदारी का नैतिक शास्त्र कहते हैं। मतलब नेता को हर फैसले के परिणामों की जिम्मेदारी लेनी होगी, जिसमें देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है।
ओके।
लेकिन पांचवा सिद्धांत यह भी साफ करता है कि कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता कि उसी के नैतिक मूल्य पूरी दुनिया के लिए सही हैं। यह उन देशों की आलोचना है जो अपनी विदेश नीति को किसी विचारधारा या मिशन के नाम पर चलाते हैं।
हाँ, कई बार ऐसा होता है।
जबकि असल में वो अपने राष्ट्रीय हितों को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं, उसे एक नैतिक जामा पहना देते हैं बस।
और छठा सिद्धांत वो क्या कहता है?
वो कहता है कि राजनीति को राजनीति के चश्मे से ही देखो। मतलब पॉलिटिकल स्फीयर की अपनी ऑटोनॉमी है, किसी राजनीतिक फैसले को सिर्फ इसलिए खारिज मत करो कि वो आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है या नैतिक रूप से 100% सही नहीं लगता। सवाल यह है कि क्या वो राजनीतिक रूप से, यानी देश की शक्ति के लिहाज से सही है?
तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत हमें दुनिया को बिना किसी लाग लपेट के उसकी असलियत में देखने की सलाह देते हैं। अब सवाल उठता है कि ये शक्ति या पावर जिसका इतना जिक्र हो रहा है, असल में है क्या मॉर्गेंथाउ के लिए?
देखिए, मॉर्गेंथाउ इसे सिर्फ सेना या हथियार तक सीमित नहीं रखते। वो कहते हैं राजनीतिक शक्ति का मतलब है एक का दूसरे के दिमाग और कामों पर नियंत्रण,
कंट्रोल।
हाँ, एक तरह का कंट्रोल या प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक देश की दूसरे देश को प्रभावित करने या अपनी बात मनवाने की क्षमता है। वो ये भी बताते हैं कि विदेश नीति के तीन मुख्य पैटर्न होते हैं।
कौन कौन से?
या तो देश अपनी मौजूदा ताकत बनाए रखना चाहता है, जिसे वो स्टेटस को कहते हैं, या उसे बढ़ाना चाहता है, इंपीरियलिज्म, या फिर सिर्फ अपनी ताकत का रौब दिखाना चाहता है, पॉलिसी ऑफ प्रेस्टीज।
अच्छा, ये तीन पैटर्न है, और ये ताकत आती कहां से?
यहीं पर मॉर्गेंथाउ राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का जिक्र करते हैं, और ये लिस्ट काफी दिलचस्प है। इसमें सिर्फ फौज नहीं है।
बिल्कुल।
वो कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति कई चीजों का मिश्रण है। कुछ तो ठोस चीजें हैं, जैसे देश का भूगोल कितना बड़ा है, कहाँ स्थित है, पड़ोसी कैसे हैं।
हाँ, ये तो बहुत मायने रखता है।
फिर प्राकृतिक संसाधन, अनाज, तेल, खनिज वगैरह, औद्योगिक क्षमता, क्या देश जरूरी चीजें खुद बना सकता है, और हाँ, सैन्य तैयारी भी।
ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन और क्या है?
और उससे भी ज्यादा अहम है, वो कहते हैं, अमूर्त चीजें, जैसे देश की आबादी, सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उनकी सेहत, उनका हुनर, उनकी उत्पादकता, लोगों का मनोबल और राष्ट्रीय चरित्र। क्या लोग मुश्किल वक्त में देश का साथ देते हैं, सरकार कितनी कुशल है, और सबसे जरूरी, कूटनीति की गुणवत्ता।
अच्छा,
मॉर्गेंथाउ कूटनीति को राष्ट्रीय शक्ति का दिमाग कहते हैं।
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर आपकी डिप्लोमेसी यानी कूटनीति कमजोर है, तो आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
एग्जैक्टली। अब जब हर देश अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है तो टकराव तो होगा ही,
जाहिर है।
इसे संभालने का एक तरीका है शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर।
हाँ,
मॉर्गेंथाउ इसे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम का एक जरूरी, मतलब इनबिल्ट हिस्सा मानते हैं।
इसका मकसद क्या है?
शांति?
नहीं।
इसका पहला मकसद शांति कायम करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि कोई एक देश इतना ताकतवर न हो जाए कि वो बाकी सबको दबा दे, मतलब सिस्टम की स्थिरता और सदस्यों की आजादी बचाना।
और ये संतुलन बनता कैसे है असल में?
कई तरीकों से। देश गठबंधन बनाते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे नाटो एक उदाहरण है।
हाँ।
या विरोधी गठबंधन बनाते हैं, कभी फूट डालो और राज करोगी नीति अपनाते हैं, या फिर कोई एक ताकतवर देश बैलेंसर का रोल निभाता है, जैसे पहले ग्रेट ब्रिटेन यूरोप में करता था। जो भी ज्यादा ताकतवर होने लगता ब्रिटेन उसके खिलाफ दूसरे देशों का साथ दे लेता था।
दिलचस्प। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून या नैतिकता या यूएन जैसी संस्थाएं इस शक्ति के खेल को कंट्रोल नहीं कर सकती? मॉर्गेंथो इस बारे में क्या सोचते हैं?
यही पर उनका यथार्थवाद और खुलकर सामने आता है। वो इन चीजों को लेकर काफी शक्की हैं, मतलब स्केप्टिकल हैं।
अच्छा।
वो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर है। क्यों? क्योंकि उसे लागू करवाने वाली कोई मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है।
हाँ, ये तो है।
जब देशों के बड़े हित दांव पर होते हैं तो वो अक्सर कानून को ताक पर रख देते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता भी भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि सही गलत की परिभाषा हर देश के लिए अलग हो सकती है। कल्चर अलग हैं, वैल्यूज अलग हैं।
और विश्व जनमत, पब्लिक ओपिनियन?
उसे भी वो मानते हैं आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, प्रोपेगेंडा के जरिए, मीडिया के जरिए।
तो अगर ये सब चीजें शांति की गारंटी नहीं दे सकती तो फिर स्थायी शांति आएगी कैसे? क्या निशस्त्रीकरण, मतलब हथियार खत्म कर देना, एक उपाय है?
मॉर्गेंथाओ निशस्त्रीकरण को भी एक भ्रम मानते हैं। वो कहते हैं कि ये कारण और प्रभाव को कन्फ्यूज करता है।
कैसे?
उनका तर्क है कि देश इसलिए हथियार रखते हैं क्योंकि उनमें झगड़ा है, उनमें अविश्वास है। ऐसा नहीं कि हथियार हैं इसलिए झगड़ा है। हथियार तो समस्या का लक्षण है, जड़ नहीं।
अच्छा।
वो सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी यूएन का जो सिद्धांत है कि सब पर हमला एक पर हमला माना जाएगा, उसको भी अव्यवहारिक मानते हैं।
क्यों? सुनने में तो अच्छा लगता है।
सुनने में अच्छा लगता है, पर मॉर्गेंथाओ कहते हैं कि देश सिर्फ तभी लड़ते हैं जब उनके अपने राष्ट्रीय हित सीधे तौर पर खतरे में हों। वो किसी और के लिए क्यों लड़ेंगे जब तक उनका अपना कोई फायदा ना हो।
तो क्या कोई विश्व सरकार, एक वर्ल्ड स्टेट समाधान हो सकती है?
सिद्धांतिक रूप से हाँ, मॉर्गेंथाओ मानते हैं कि वही एकमात्र पक्का समाधान है। लेकिन वो साथ ही कहते हैं कि राष्ट्रवाद इतना मजबूत है और देश अपनी संप्रभुता, अपनी आजादी छोड़ने को तैयार नहीं है।
हाँ, ये तो सच है।
इसलिए ये अभी सिर्फ एक सपना है, अव्यावहारिक है।
तो फिर मॉर्गेंथाओ के हिसाब से सबसे अच्छा, या कहें कि सबसे प्रैक्टिकल, यथार्थवादी रास्ता क्या है शांति के लिए?
उनका जवाब है कुशल कूटनीति, डिप्लोमेसी। यही वो कला है जिससे ताकत के इस खतरनाक खेल को बिना बड़े युद्ध के संभाला जा सकता है।
लेकिन ये कूटनीति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने कुछ बताया है?
हाँ बिल्कुल, मॉर्गेंथाओ कुछ नियम या सिद्धांत बताते हैं प्रभावी कूटनीति के लिए। जैसे किसी विचारधारा के जोश में अंधे ना हों, रियलिस्टिक रहें, अपने लक्ष्य साफ रखें, राष्ट्रीय हित क्या है उसे समझें, समझौते के लिए हमेशा तैयार रहें, खासकर कम जरूरी मुद्दों पर अड़े नहीं रहें। कभी अपने आप को ऐसी स्थिति में ना डालें जहां से पीछे हटने पर बेइज्जती हो, मतलब फेस सेविंग का रास्ता रखें। दूसरे देशों के हितों को भी समझने की कोशिश करें।
यानी समझदारी, दूरदर्शिता और बातचीत ही सबसे बड़े हथियार हैं इस यथार्थवादी दुनिया में।
बिल्कुल, कूटनीति ही वो रास्ता है जिससे शक्ति संघर्ष को विनाशकारी होने से रोका जा सकता है, भले ही उसे पूरी तरह खत्म ना किया जा सके।
अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मॉर्गेंथाओ की किताब के मुख्य संदेश क्या हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे बड़ा संदेश तो यही है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति और राष्ट्रीय हित ही सबसे ऊपर हैं। देशों के सारे काम इसी चश्मे से देखे जाने चाहिए।
बिल्कुल। दूसरा, इंसान का स्वभाव जिसमें वो सत्ता की इच्छा, एनिमस डोमिनेंडी, शामिल है, वो राजनीति की जड़ में है। इसलिए सत्ता का संघर्ष हमेशा रहेगा, ये कोई अस्थायी चीज नहीं है, इसे स्वीकार करना होगा।
तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था असल में अराजक है, मतलब कोई वर्ल्ड पुलिस नहीं है, हर देश को अपनी सुरक्षा की चिंता खुद करनी पड़ती है, ये एक सेल्फ हेल्प सिस्टम है, इसी वजह से ताकत इतनी जरूरी हो जाती है।
चौथा, आदर्शवाद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, नैतिकता, संगठन, ये सब अपनी जगह हैं, पर ये शक्ति की राजनीति को रोक नहीं सकते। इन पर आंख मूंद कर भरोसा करना भोलापन है, मॉर्गेंथाओ के अनुसार।
और आखिर में, इतनी निराशाजनक तस्वीर के बावजूद मॉर्गेंथाओ लड़ाई के पैरोकार नहीं है, वो समझदारी, प्रूडेंस और कुशल कूटनीति को सबसे बड़ा राजनीतिक गुण मानते हैं। यही वो तरीके हैं जिनसे इस मुश्किल दुनिया में कुछ हद तक शांति और स्थिरता लाई जा सकती है।
मॉर्गेंथाओ की किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो वाकई दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे पहली, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीति की तरह सत्ता के लिए संघर्ष है। सत्ता हमेशा तात्कालिक उद्देश्य होती है। ये उनके पूरे सिद्धांत का निचोड़ है, है ना?
बिल्कुल। ये साफ करता है कि चाहे घोषित लक्ष्य कुछ भी हो, पहला कदम हमेशा ताकत हासिल करना या बचाना ही होता है। दूसरी यादगार बात है, राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य गाइड पोस्ट है। शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित ये एनालिस्ट या पॉलिसी मेकर के लिए टूल की तरह है। भावनाओं या भाषणों में मत उलझो, देखो कि शक्ति समीकरण पर क्या असर पड़ रहा है।
तीसरी पंक्ति नैतिकता पर उनके जटिल रुख को दर्शाती है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को सीधे राज्यों पर लागू नहीं किया जा सकता, उन्हें समय और स्थान की ठोस परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ये अनैतिकता का लाइसेंस नहीं है, बल्कि ये याद दिलाता है कि एक राजनेता की जिम्मेदारी निजी नैतिकता से अलग और ज्यादा जटिल होती है। राज्य का अस्तित्व बचाना अपने आप में एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है।
और चौथी कूटनीति के बारे में, जो मुझे बहुत पसंद आई। कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों को उन बिंदुओं पर अधिकतम प्रभाव के साथ लाने की कला है जो राष्ट्रीय हित से सबसे सीधे संबंधित है। ये दिखाता है कि कूटनीति सिर्फ मीठी बातें करना नहीं, बल्कि एक ऊंचे दर्जे का हुनर है, एक कला है।
तो ये सिद्धांत आज हमारे किस काम आ सकते हैं? क्या हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या आज की दुनिया की घटनाओं पर लागू कर सकते हैं?
बिल्कुल, आज की वैश्विक घटनाओं को समझने के लिए ये नजरिया बहुत मददगार है। अमेरिका चीन की जो होड़ चल रही है, या यूक्रेन का युद्ध, या मिडिल ईस्ट का तनाव, मॉर्गेंथाउ हमें सिखाते हैं कि ऊपरे नारों के पीछे देखो, जैसे लोकतंत्र बचाओ या साम्राज्यवाद का विरोध, इनके पीछे देशों के असली शक्ति संबंधी हित क्या है। इससे तस्वीर ज्यादा साफ नजर आती है।
और सरकारों और राजनयिकों के लिए तो ये किताब एक तरह से हैंडबुक जैसी है। अपनी ताकत को समझो, उसकी सीमाएं जानो, ख्वाबों की दुनिया में मत जियो, और सबसे बढ़कर कूटनीति का इस्तेमाल समझदारी से करो। बड़े बड़े नैतिक मिशन पे निकलने से पहले 100 बार सोचो कि क्या ये तुम्हारे देश के असल हित में है।
और हम आम नागरिकों के लिए, ये हमें अंतर्राष्ट्रीय खबरों को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करती है। सरकारें क्या कह रही हैं और असल में क्या कर रही हैं, इसके बीच का फर्क समझने में मदद मिलती है। क्यों कोई देश मानवाधिकार की बात करते हुए भी किसी ऐसे देश से व्यापार करता है जिसका रिकॉर्ड खराब हो?
हाँ, मॉर्गेंथाउ का यथार्थवाद इसका जवाब देता है। राष्ट्रीय हित अक्सर नैतिक चिंताओं पर भारी पड़ते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि इन सिद्धांतों की झलक हमें राजनीति से बाहर भी दिख सकती है, जैसे बिजनेस नेगोशिएशन में सामने वाले के असली हित क्या हैं, उसकी शक्ति कहाँ है, ये समझना और अपनी मजबूती की स्थिति से बात करना, ये भी तो एक तरह का यथार्थवाद ही है।
हाँ, ये तो है। यहाँ तक कि ऑफिस की पॉलिटिक्स में भी लोग अपने प्रभाव यानी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे है विश्लेषणात्मक स्पष्टता। मॉर्गेंथाउ की किताब दुनिया की उलझनों को काट के एक चीज पर फोकस करने को कहती है, शक्ति का खेल। ये नजरिया शायद थोड़ा ठंडा और निराशाजनक लगे, पर यह हमें चीजों को उनकी असलियत में देखने की ताकत देता है।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतना यथार्थवादी और कुछ हद तक निराशावादी होने के बावजूद मॉर्गेंथाउ शांति के दुश्मन नहीं है, बल्कि वो मानते हैं कि असली शांति तभी आ सकती है जब हम शक्ति की हकीकत को समझें और उसे समझदारी से मैनेज करें, न कि उससे आंखें चुराएं। कूटनीति और विवेक यही उनके असल हथियार हैं। ये सोचना कि शांति का रास्ता भी शक्ति की समझ से होकर गुजरता है, ये अपने आप में एक गहरी बात है।
और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में जहाँ शक्ति के नए रूप सामने आ रहे हैं, जैसे साइबर पावर है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है।
हाँ, बिल्कुल।
क्या मॉर्गेंथाउ के सिद्धांत अब भी उतने ही प्रासंगिक हैं, या हमें उन्हें नए सिरे से समझने की जरूरत है?
ये सवाल आज भी उतना ही अहम है, और शायद आने वाले समय में और भी ज्यादा अहम होगा। इस पर सोचना जरूरी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।